نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد محترم بزرگوں اور بھائیوں اللہ کا ذکر کرنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے اور ایمان کو تازہ کرنے کا حضور نے حکم فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایمان پرانا ہو جاتا ہے ایمان پہ گرد و غبار چھا جاتا ہے اس کو صاف کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اس کو نیا کرنے کی ضرورت پڑتی ہے ایمان کا تعلق چونکہ نظر نہیں آنے والی دنیا سے ہے نظر نہیں آنے والے عالم سے ہے غیب سے ہے اور جو چیز غیب میں ہے اگر اس کا تذکر آنا ہو بار بار تو پھر آنکھوں کے سامنے نہیں رہتی اس لیے اللہ پاک کا تذکرہ جتنا کر کیا جاتا ہے اتنا ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اللہ کا ذکر بھی اور اللہ کا تذکرہ بھی اللہ کا ذکر کلمہ پڑھنا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے تسبیح پڑھنا ہے تحمید پڑھنا ہے درود شریف پڑھنا ہے درود شریف بھی اللہ پاک کے ذکر کو شامل ہے اور ایک اللہ کا تذکرہ ہے کہ اللہ پاک ہمارے رب ہیں اللہ پاک خالق ہیں مالک ہیں اللہ حاکم ہیں اللہ ہی مدبر ہیں تدبیر کہتے ہیں مینجمنٹ کو مدبر الامر فصل الایات ہیں مدبر اللہ پاک ہی پورے عالم کو مینج کرنے کا کام وہ خالق ہیں وہ مالک ہیں انہوں نے پیدا کیا سب کو پیدا کیا اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہوتا اللہ ہی خالق ہے اور جو اللہ کے علاوہ ہے سب مخلوق ہیں تو انہوں نے ہر شے کو پیدا کیا اس لیے وہ خلق کل شئین فقدرہ تقدیرا ہر شے کو پیدا کیا اللہ خالق کل شئین وہ ہر شے کو پیدا کرنے والے ہیں وہ علی کل شئین وکیل اور وہ ہر شے پر وکیل ہیں وہ علی کل شئین شہید وہ ہر شے پر حاضر ہیں اللہ رب ہے ساری کائنات کے رب ہیں ذرے ذرے کے رب ہیں ہمارے رب ہیں ہمارے ماں باپ کے رب ہمارے بچوں کے رب ہماری بیویوں کے رب ہمارے کاروبار کے رب اور ہمارے جاب کے بھی رب رب جو ہے وہ سب کے رب ہے کائنات کے بھی رب پالنے والا ضرورت پوری کرنے والا ایک اکیلا اللہ اللہ نے فرمایا دنیا میں بھیجنے سے پہلے بتا دیا تھا کہ دیکھو رب میں ہوں نقشے اور دنیا کی شکلیں تم کو اپنی طرف کھینچیں گی اور یہ گمان ہو سکتا ہے کہ ان سے میں پلتا ہوں اس لیے وعدہ لیا دنیا میں بھیجنے سے پہلے الست ربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں اور دنیا میں اللہ نے اس پر مشق کرنے کو محنت کرنے کو فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر جمے رہے وہ جمنا کہ ہمارا رب اللہ ہے ہم پلتے اللہ پاک سے بھی قبر میں جانے کے بعد میں سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ من رب کا تمہارا رب کون ہے اس کو رب سمجھتے رہے جتنے اسباب ہیں جتنی شکلیں ہیں جتنی چیزیں ہیں آدمی جو ہے ان سے جوڑتا ہے اپنی ضرورتوں کو ضرورت پوری ہونے کا نام ربوبیت ہے دوا نہ ہوتی تو میں تھے نہیں ٹھیک نہ ہوتا کھانا پینا نہ ہوتا تو میں بھوکا مر جاتا پیسے نہ ہوتے تو میں پلتا نہیں جاب نہ کرتا تو مجھے پیسے نہ ملتے میں جاب نہیں کروں گا تو بچے کیسے پلیں گے بیوی کیسے پلے گی دکان والا اپنی دکان کے بارے میں کھیت والا اپنے کھیت کے بارے میں جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتا ہے وہ ایگریکلچر سے جوڑتا ہے ایمان والے کا ایمان بھی آج کل ڈگمگایا ہوا ہے وہ کہتا کرتے تو اللہ ہیں مگر کرتے کرنے والے تو اللہ ہیں مگر उलमा ये फरमाते हैं कि अल्लाह का इतना तज़किरा करो, अल्लाह की रबूबियत के ऊपर इतना यकीन ना हो कि ये मगर ना आए। वो मर्जी है उनकी, किसी सबब को इख्तियार करना हो सबब को इख्तियार करें पालने के लिए या ना करें या उल्टा कर दें, जो पलने की चीज़ है वो हलाकत की चीज़ हो जाए, जो हलाकत की चीज़ है वो पलने की चीज़ हो जाए, ना हो उसके बगैर पाल दें। मूसा अलैहि सलाम की सीरत में लिखा है उनके हालात में, एक मरतबा मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह से अर्ज़ किया कि परवरदिगार आप अपनी कुदरत का कोई करिश्मा दिखाओ। नाज़ वाले पैगंबर थे, जैसे इब्राहिम अलैहि सलाम नाज़ वाले पैगंबर थे, कहने के मुझे जिंदा कैसे करते हैं आप दोबारा करेंगे वो बताओ, रब अरिनी कैफ़ तुहयील मौता, बताओ कैसे जिंदा करेंगे। वैसे पैगंबर थे, ताल्लुक ऐसा था, अल्लाह ने करके बताया मूसा अलैहि सलाम ने अपनी कुदरत का करिश्मा देखो। अल्लाह ने फरमाया सुना कि तुम अच्छा ये पत्थर पढ़ो, एक बहुत बड़ी चट्टान थी, इसराइली रिवायत है, वो पत्थर वो चट्टान को तोड़ा गया तो चट्टान के बीच में से एक कीड़ा निकला और उस कीड़े के मुंह में हरी पत्ती थी, इधर चौ तरफ से कोई रास्ता नहीं था। हमारे यहाँ हैदराबाद के करीब एक जगह है औरंगाबाद, वहाँ पे एक शायर गुजरे हैं सफ़ी, सफ़ी औरंगाबादी, उनका शेर इसी वाक़े पर है, सफ़ी किसी का रिस्क कब रुक सकता है खल्लाक अकबर से, सफ़ी पत्थर के कीड़े को ग़िज़ा मिलती है पत्थर से, किसी का रिस्क कब रुक सकता है खल्लाक अकबर से, सफ़ी पत्थर के कीड़े को ग़िज़ा मिलती है पत्थर से। अल्लाह पाक जैसे चाहे पाल दें, जब बड़े असबाब के पाल दें, असबाब से पाल दें, असबाब के बरखिलाफ़ से पाल दें, खिलाफ असबाब होने पर पाल दें, पालने में हिफाजत भी है, असबाब के बगैर हिफाजत करें, असबाब से हिफाजत करें, दुश्मन से हिफाजत कराएं, दुश्मन के घर में पाल के दिखाएं, पालने वाले हुए हैं उनके सबब से नहीं जुड़ना है यकीन बनाते वक्त, वो कैसा करेंगे हमें नहीं पता, वो बस करने वाले तो वही हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को चैलेंज कर दिया था फिरौन, जो बच्चा पैदा होता उसको काट देता, उसको ज़बह कर देता। अल्लाह ने यह तय फरमाया कि पाल के बताएंगे, और यहाँ वहाँ नहीं, तुम्हारे पास पाल के बताएंगे, तुम्हारी गोद में पाल के बताएंगे। अल्लाह को कौन चैलेंज कर सकता है और अल्लाह पर कौन गालिब आ सकता है। अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम को दुश्मन के घर भेज दिया, मौत के मुंह में रख के भेज दिया। अब एक छोटे बच्चे को आप कह रहे हैं पानी में उसको संदूक में बंद करो, तो बंदूक बंद करना खुद मौत के मुंह में डालना है, फिर उसके बाद अल्लाह ने कहा इसको पानी में डालो, छोटे बच्चे को पानी में छोड़ दोगे ताबूत में रखे तो क्या होगा, कहाँ भेज रहे हैं। तो खुदा की करनी देखो, पानी का बहाव शाही महल की तरफ था फिरौन के, क्योंकि फिरौन के महल का सेटअप कुछ ऐसा था कि उसके अंदर से नहर गुजरती थी, वो उधर निकल गया, उधर ही भेज दिया। फलतखतहु आलू फिरौन, फिरौन की घरवालों ने उठा लिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने पाल के बताया कि मैं तो दुश्मन के गोद में भी पाल दूंगा, मुझे कौन चैलेंज कर सकता है, हिफाजत कर दूंगा, मुखालिफ असबाब में भी हिफाजत कर देंगे, मुआफिक असबाब में भी कर देंगे, बगैर असबाब की भी कर देंगे, करने वाले वही हैं। मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी से वादा किया था कि तुम इस बच्चे को संदूक में बंद करके पानी में डाल दो, मैं वापस करूँगा इसको तुम्हारे पास, मैं वापस करूँगा। वो ईमान वाली थी, उन्होंने अल्लाह का वादा सच्चा होता है, जब कह रहे हैं अल्लाह पाक तो संदूक में भी बंद कर दिया पानी में भी डाल दिया। अब वापसी का निज़ाम देखो, रब ऐसे हैं अल्लाह पाक, अल्लाह फरमाते हैं हरमना अलैहिल मरादिअ मिन क़ब्ल, हमने सारे दूध पिलाने वालियों को मूसा पर हराम कर दिया, मूसा पे हराम, इतना छोटा सा बच्चा है दूध पीने वाला, उसको बता दिया कि नहीं पीना है किसी का दूध, उनका हुक्म सब पे चलता है, वो सबको सिखा देते हैं, बच्चे को दूध पीना सिखा देते हैं पैदाइश को। सुना तो सबका दूध पीने पिलाने की कोशिश की फिरौन ने, मगर किसी का दूध नहीं पिया मूसा अलैहिस्सलाम ने। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन जो है वो फॉलो अप कर रही थी, मुझे भेजा था उनकी माँ ने, उससे तबसरत भी अंजुनों में वह लाए शोरों, इसको फॉलो करो और देखते रहना पहलू बचा के। उन्होंने जब देखा कि किसी का दूध नहीं पी रहे, बहन ने देखा, कहने को मैं घरवालों को जानती हूँ जो ये काम कर सकते हैं, जो आपको ला के दे सकते हैं और दूध पिला सकते हैं बच्चे को। फिर उन्होंने कहा ले आओ जल्दी ले आओ भाई उनको। जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा आई, अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को जो तालीम फितरी तौर पर दी हुई थी कि किसी का दूध नहीं पीना, वो मूसा अलैहिस्सलाम की माँ वालिदा की गोद में गए मूसा अलैहिस्सलाम और दूध पी लिया और सो गए। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया कि हमने चूंकि वादा किया था कि हम वापस करेंगे, इसलिए हमने वापस कर दिया। रब ऐसे हैं, ऐसे पालने वाले हैं, हिफाजत करने वाले अल्लाह, पालने वाले अल्लाह, करने वाले अल्लाह, इज्जत अल्लाह के हाथ में, जिल्लत अल्लाह के हाथ में, नफ़ा अल्लाह के हाथ में, नुकसान अल्लाह के हाथ में। इसीलिए ईमान का तकाजा ये है कि मखलूक का तासुर ख़त्म हो जाए। दावत की मेहनत इसलिए करना है कि मखलूक का तासुर ख़त्म हो जाए। ईमान की मुज़ाकरा इसलिए है, अल्लाह का तज़किरा इसलिए है कि अल्लाह की जितनी मखलूक है, बड़ी छोटी, आसमानी ज़मीनी, नज़र आने वाली नज़र नहीं आने वाली, दोस्तों की शक्लों में, दुश्मनों की शक्ल में, सबका तासुब इनसे निकल जाए, ना उनसे कोई तमा बाकी रहे और ना उनका खौफ बाकी रहे। लालच भी नहीं होना चाहिए और खौफ भी नहीं रहना, सिर्फ अल्लाह से उम्मीद और अल्लाह ही का खौफ, ये चाहते हैं अल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह पाक का ऐसा तज़किरा किया जाए कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ ताल्लुक बढ़ जाए, ईमान में इजाफा हो, ईमान की कैफियात में इजाफा हो और आदमी की आँखों के सामने आ जाए ये हकीकत कि पूरी की पूरी कायनात तो अपनी ज़ात से कुछ नहीं कर सकती, उसके पास कुछ है ही नहीं, करने वाली कोई सिफत इसमें नहीं होती। फाइल अल्लाह पाक, ला फाइला इल्लल्लाह, इसके लिए दावत है। दावत में अल्लाह तबारक व तआला ही का तज़किरा होता है, रब्बका फकब्बिर, अपने रब की बड़ाई बयान करो, दावत की मेहनत है। इससे ईमान में इजाफा होता है, ईमान में कमाल आता है, दावत से ईमान में कमाल आता है। दावत ईमान के कमाल का जरिया है, दावत का हुक्म इसीलिए दिया गया ताकि ईमान वाले अपने ईमान में कमाल लाते रहें। नाइल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालों ईमान लाओ, ये अपने ईमान में कमाल पैदा करो। जो कमाल के अल्लाह तबारक व तआला ने आमाल मुकर्रर फरमाए हैं, अल्लाह तआला ने आमाल पर वादे किए हैं, तो उन अमलों में से एक अमल जो है ना दावत इल्लल्लाह है, अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाना, उनमें जाना, उनके लिए सफ़र करना, अपना पैसा लगाना, अपना वक्त लगाना, अल्लाह ताला की मखलूक पर रहम खाना, क्योंकि जिनको दावत दी जाएगी उनके कुलूब मुतवज्जे होंगे और वो हिदायत की तरफ आएंगे तो जहन्नम से बचेंगे। उससे हमारे ईमान के अंदर कमाल आएगा। दावत को अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान के कमाल का जरिया फरमाया और हम सब के सब ईमान के कमाल के मोहताज हैं। ये भी कोई भी मुसलमान नहीं कह सकता कि मुझे मेरा ईमान कामिल हो चुका है, और कोई नहीं कह सकता कि मुझे अपने ईमान में कमाल की ज़रूरत नहीं है, ईमान में कमाल की ज़रूरत है। तो भाई क्या करना उसके लिए, दावत की मेहनत में करो। दावत की मेहनत कैसे करना, तो जैसे बड़े बता रहे हैं वैसे करो। मकामी मेहनत होती है वो भी करो, सफ़र की मेहनत होती है खुरूज की वो भी करो, तो खुरूज भी करना और मकामी मेहनत भी करना। ज़्यादा से ज़्यादा खुरूज, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मुलाकात करना, असल है लोगों तक मुलाकात करके, इंफरादी तौर पर मुलाकात करके उनको मस्जिद में लाकर मस्जिद वाले माहौल में उनसे दीन की बात करना, मस्जिद वाले माहौल में उनसे दीन की बात करना, क्योंकि मस्जिद तासुर की जगह है, असर पड़ता है दिलों पर। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी का माहौल ऐसा बनाया था कि किसी गैर मुस्लिम को भी मस्जिद नबवी में लाकर रखते तो 3 दिन में उसका हाल बदल जाता था। मस्जिद फरिश्तों की जगह है, खैरुल बिका है, रहमत नाजिल होती है अल्लाह तबारक व तआला की, फरिश्ते रहते हैं यहाँ पर, पाकिजगी होती है, नूरानियत होती है। जैसे गिराज में गाड़ी बनती है ना, मस्जिद में आदमी बनता है। तो मस्जिद वाले माहौल में लोगों को लाना, बाहर भी बात इसीलिए करना कि हत्तल इम्कान को मस्जिद में लाने की मेहनत की जाए। मस्जिद में बुला के फिर ईमान के तज़किरे करना, तो ईमान के तज़किरे से उनके ईमान में भी कमाल आएगा, बढ़ोतरी आएगी, हमारे ईमान में भी कमाल आएगा। उसके लिए यह है कि आदमी को अच्छा खासा वक्त रोजाना निकालना चाहिए, अपनी गश्त है, दूसरी गश्त है, घर की तालीम है, मस्जिद की तालीम है, रोजाना का मशवरा है, रोजाना की फिक्रें हैं, काम की बुनियाद फिक्र है। इसी को कहते हैं कि रोजाना फिक्र करना, फिक्र से शुरू होता है, फिक्र से मशवरा है, मशवरे से जो है ना फिर तालीम है, तालीम से फिर ज़ियारात और मुलाकातें हैं, मुलाकातों में इंफरादी मुलाकात असल है, और दावत जो होती है वो इंफरादी मुलाकात में असल मुतहक्क होती है। सही दावत का जो मफहूम अदा होता है वो फ़र्द से मुलाकात करके उसको उसके सामने अल्लाह की बड़ाई बयान करने और उसको अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करने से होता है। और फिर यह है कि एक वक्त सफ़र करना भी पड़ता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुमसे सफ़र का मुतालबा किया जाए तो तुम सफ़र करो, ना हिजरत बाद अल-फ़त्ह वलाकिन जिहाद वनियत वयदस्तुन फिरतुम फनफिरु। फतेह मक्का हो जाने के बाद में अब हिजरत फ़र्ज़ नहीं रही, लेकिन दीन की मेहनत अलबत्ता फ़र्ज़ है और नीयत हिजरत भी फ़र्ज़ है। हिजरत की नीयत करो, यानी अगर दीन पर चलना मुश्किल हो जाए तो जगह छोड़ के चले जाएंगे, दीन पर चलना बहरहाल ज़रूरी है। और फिर उन्होंने फरमाया कि जब तुमसे सफ़र का मुतालबा किया जाए तो तुम सफ़र करना, जैसे तुम फिर तुम फन फिरो, जब सफ़र का मुतालबा हो तो सफ़र करना। इसके लिए खुरूज है, अल्लाह के रास्ते में निकल। तो दीन की मेहनत के लिए खुरूज करना है। खुरूज की रुकावट क्या है? अल्लाह की रुबूबियत के ऊपर ईमान में कमजोरी। कैसे जाऊँ मैं जाऊँगा तो कारोबार कौन संभालेगा? मैं जाऊँगा तो दुकान कैसे चलेगी? मैं जाऊँगा तो ये बच्चे कैसे पलेंगे? इसका मतलब ये है कि अल्लाह पाक की रुबूबियत में कमजोरी है, रुबूबियत पर ईमान में कमजोरी है। उसको ताकतवर बनाने का है। अल्लाह ने कहा कि तुमको 12 महीने कमाना पड़ेगा पलने के लिए, तुमने कहा खातिर मतलब है वो। तुम 12 महीने चाहे तो 12 महीने मेहनत करके लो, चाहो तो तुम 8 महीने मेहनत करके 12 महीने कर लो, चाहे तो 4 महीने मेहनत करके 12 महीने कर लो। वो तो देने वाले दे सकते हो और देते हैं, दे रहे हैं, जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको दे रहे हैं। ये गैर मुस्लिमों का प्रोग्राम तुमने क्यों अडॉप्ट किया? ये प्रोग्राम गैर मुस्लिमों का है कि भाई हमको हफ्ते में इतने दिन काम करना है और जनाब ये वक्त से ये वक्त तक करना है और पूरी मशगूलियत दिन भर की अपने आप को मुलाजमत में लगा के थका देना है। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत तो वक्त बीवी बच्चों को देना पड़ता है, फिर दिन के वक्त दिन का काम करने के लिए वक्त ही नहीं था। किसने कहा था कि आपको जब 6 बजे से लेकर 6 बजे तक नौकरी करो? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाते हैं कि अला इन नफ्स लन तमूत हत्ता तस्तकमिल रिज़्क़हा। सुन लो इस बात को कि कोई आदमी मर नहीं सकता जब तक अपना रिज़्क़ वसूल न करे, कोई आदमी मर नहीं सकता जब तक अपना रिज़्क़ वसूल न करे। फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, व अजमिलू फि तलब, और कमाने को मुख्तसर करो, कमाने में टाइम मुख्तसर लगाओ। व तवक्कलू अलैह, और अल्लाह पे भरोसा करो, क्योंकि जो अल्लाह पे भरोसा करता है तो अल्लाह काम बनाता है, भरोसा नहीं करता है तो नहीं बनता काम। इजमान फि तलब, इजमान फि तलब का मतलब है कि बकदर ज़रूरत कमाने के फिर असली काम में लग जाना, कमाने को ही अपना काम बना लिया है, ये नहीं है तरीका इस्लाम का सिखाया हो। ये तो अब धोखा है दुनिया के साथ और दुनिया का अपने साथ। क्या धोखा है? एक हदीस कुदसी है, उसके मफहूम ये है कि अल्लाह ताला ने दुनिया से फरमाया कि या दुनिया इख्दमी मन खादमनी, दुनिया तो खादिम रहना उसकी जो मेरी खिदमत में लगा रहे, तो खिदमत करना उसकी जो मेरी खिदमत में लगा रहे, जो मेरी खिदमत में लगा रहे उसके काम आते रहना, उसके सामने आते जाना, उसकी ज़रूरतें पूरी होते रहें, तेरे जरिए से काम उसका पूरा होता रहे। ऐ दुनिया को खादिम हो जाओ उसकी जो मेरी खिदमत करे, वस्तखदिमी मन खदमती, और जो तेरी खिदमत करे उसे खूब घसा दे, उसको खूब रड़ा दे, दे किसी काम का ना छोड़, इतना थका दे कि किसी काम का ही नहीं रहा बंदा। तो हम ये समझ रहे हैं कि हम दुनिया को इस्तेमाल कर रहे हैं, हकीकत ये है कि दुनिया हमें इस्तेमाल करके फेंक दे रही। बर्तन मांजने का होता नहीं, घसनी, बर्तन मांजने की घसनी बने हुए दुनिया के वास्ते। तो तलब में इजमान है, तलब को मुख्तसर करो, وتوكلوا عليه الله پہ بھروسہ کرو ان اللہ يحب المتوکلین اللہ بھروسہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں من يتوكل على الله فهو حسبه جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کو کافی ہوتے ہیں تو خروج اس لیے نہیں کر سکتا مسلمان کہ وہ اپنی بیوی بچوں سے اتنا اٹیچ ہو گیا ہے اتنی محبت کرنے لگا ہے کہ وہ ان سے تھوڑی دیر کے لیے بھی جدا ہونا نہیں چاہتا مگر دنیا کے لیے دین کے لیے جدا ہونا نہیں چاہتا لیکن دنیا کے لیے جدا ہونا پڑے جدا ہوتا ہے کتنے سال سے نہیں گیا آپ اپنی بیوی بچوں سے ملنے والے تو نہیں ابھی لیگل اسٹیٹس نہیں بنا ہے دو تین سال ہو گئے چار سال ہو گئے پانچ سال ہو گئے مہینے پہ ہوں گے تو بیوی بچوں سے دور رہنا دنیا کے لیے آسان ہے لیکن دین کے لیے نہیں مشکل ہے کام چھوڑنا مشکل ہے حضور نے فرمایا کہ نہیں یہ طریقہ نہیں ہے کام کرنے کا جب رب اللہ پاک ہے تو اللہ پہ بھروسہ کرو اور رب ربوبیت کا یقین بناؤ اس کے واسطے سفر کرو اس لیے ہمارے بڑے یہ فرما رہے ہیں کہ آج کل تو ہر سال آدمی کو چار مہینے اللہ کے راستے میں سفر کرنا چاہیے اور آٹھ مہینے اپنے مقام پر محنت کرنا چاہیے ہم سے سے روزہ نہیں لگ رہا ہم کہتے ہیں یہی بہت مشکل ہے اور کام کرنے والے لگ کر رہے ہیں زندگیاں لگا دی انہوں نے اور ہر سال کے چار چار مہینے دیتے ہیں اور ہر ملک میں دیتے ہیں اس ملک میں بھی دے رہے ہیں اور اس سے زیادہ بیزی ملکوں میں بھی دے رہے ہیں بڑے بڑے جاب والے دے رہے ہیں جس کے دماغ سمجھ میں بات آ جاتی ہے اس کے لیے اللہ پاک آسان فرما دیتے ہیں اس کی نیت بنتی ہے نیت بننے کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے سارا مسئلہ نیت کا ہے کیونکہ نیت تک کا ایسا اختیار ہے کہ جس میں خرچہ کچھ بھی نہیں ہے اور یہاں پر امتحان ہے کیونکہ اس کے بعد بھی کوئی کام بندہ نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی مدد نہ ہو اللہ کی مدد کے بغیر کون نکل سکتا ہے نہیں مگر اللہ پاک چاہتے یہ ہیں کہ ہم نے ایک سے فری میں دی ہوئی تم اور وہ نیت ہے یہ تم بناتے ہو کہ نہیں بناتے جیسے بندہ نیت کرتا ہے سچے دل سے سچی نیت تو پھر ان کی مدد شروع ہو جاتی ہے جو کہ آئندہ کام سارے ان کی مدد کے مدد سے ہی ہوں گے لا حول ولا قوت الا باللہ کوئی برائی سے بچ نہیں سکتے کوئی نیکی کر نہیں سکتے جب تک ان کی طرف سے مدد نہ آئے ان کو ہی پتا ہے ہم کو بھی یہی بتایا گیا ہے کہ میری مدد کے بغیر کوئی قدم بھی نہیں اٹھ سکتا مگر اب کیا کرنا ہے کرنا یہ ہے کہ اس کو نیت کرنا ہے کہ میں کروں گا یہ کام محنت کروں گا سفر کروں گا یہاں سے شروعات ہے جیسے بندہ کرتا ہے نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شروع ہو جائے گی تو اس لیے دعوت کا اصول یہ ہے کہ نیت بنائی جائے نیت کی جائے کہ اللہ کے راستے میں ہم محنت کریں گے اور سفر کریں گے دور دراز کا بھی اور اپنے مقام پر بھی محنت کریں گے کریں گے سب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو توفیق دے بتاؤ کس کا کس کا کیا کیا ارادہ ہے اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن واجعلنا في اسمائنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اجعلنا دعاة اليك والى رسولك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصل وسلم وبارك على سيدنا المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين الحمد لله